मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 23 मार्च 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं और बहुत बहुत हार्दिक रूप से अभिनंदन भी करता हूं। दोस्तों, हम लोग फिलहाल हनुमान चालीसा के बारे में बातें कर रहे हैं। मुझे मालूम है कि हो सकता है कि आप में से कुछ लोग इसकी धीमी गति को लेकर के इरिटेट हो रहे हों कि इतने दिन हो गए, 5 एपिसोड तो हो गए और अभी तक हम लोग कहीं पहुंचे ही नहीं हैं, और सच पूछिए तो शायद पहुंचेंगे भी नहीं, क्योंकि हनुमान चालीसा अपने आप में इतना गूढ़ अर्थ लिए हुए है कि अगर हड़बड़ी में इसके बारे में बताया जाए तो आप यूं कह लीजिए कि फिर हनुमान चालीसा को निपटाना ही होगा, बताना नहीं होगा, समझाना नहीं होगा, इस पर विचार करना नहीं होगा। तो मैं पूरी विनम्रता के साथ आप सबसे क्षमा मांगते हुए यह अनुमति लेना चाहूंगा कि मुझे धीमी गति से ही चलने की अनुमति दें। भले ही हम थोड़ा सा ही चलें, लेकिन जितना चलें उसको मुकम्मल तौर पर तो चलें, संपूर्णता के साथ चलें। हो सकता है कि मेरी यह छोटी सी यात्रा, यह छोटा सा चलना ही आपको इतना संपन्न बना दे, आपके अंदर वो अंतर्दृष्टि पैदा कर ले कि इस जर्नी में जो बाकी हिस्सा छूट गया है उसे आप खुद पूरा करने लायक बन सके। हु नोज, कौन जानता है, हो सकता है कि ऐसा हो जाए, और सच पूछिए तो ऐसा होता भी है। इसलिए पूरी क्षमा याचना के साथ आइए अब मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बल, बुद्धि, विद्या। बुद्धि का मतलब क्या है कि मेरा जो दिमाग है वो खराब न हो, मेरे दिमाग का संतुलन बना रहे। अब आप देखिए कि ये जो दिमाग का जो आपका संतुलन है ये कैसे बना रहेगा। हम सबका दिमाग कभी ना कभी खराब होता है, कभी क्रोध आएगा, कभी बहुत निराशा घर कर जाएगी, कभी मन में बहुत विभत्स भाव आएगा, पता नहीं कितने भावनाएं उठती रहती हैं। लेकिन जो बुद्धि की जो डिमांड है, बुद्धि तभी सही तरीके से काम करेगी जब उसका संतुलन बना रहे। और दोस्तों, इस संतुलन के जो सर्वोत्तम उदाहरण हमारे यहां हैं वो हमारे दो अवतार हैं, एक है राम और दूसरे हैं कृष्ण। आप देखिए कि राम के बारे में हमारे यहां क्या कहा गया है। राम का सुबह राज्याभिषेक होना है और रात में, उसके ठीक पहली रात में पिता उन्हें वन जाने का आदेश देते हैं। देते हैं नहीं देते हैं उसको हम लेकर के नहीं चल रहे हैं, क्योंकि दशरथ ने तो कभी कहा ही नहीं कि तुम वन चले जाओ, वो तो लगातार यही कहते रहे कि नहीं नहीं तुम मत जाओ। खैर, तो वहां तुलसीदास जी ने लिखा है कि राम का जो चेहरा है वो बिल्कुल पहले जैसा है, यानी कि राज्याभिषेक की खबर से या राज्याभिषेक की घटना से उन्हें जिस तरह की प्रसन्नता हो रही होती या उनके चेहरे पर जो भाव रहते, वही भाव ज्यों की त्यों अभी भी हैं, जबकि वो तैयारी किसकी कर रहे हैं, वन गमन की कर रहे हैं। कितने दिनों के लिए, एकाध दो महीने के लिए नहीं, 14 साल के लिए वन में रहना है, अयोध्या छोड़ना ही नहीं है बल्कि छोड़ करके वन में रहना है। नहीं तो राजपुत्र थे, किसी भी बड़े शहर में अच्छे राजा के यहां जाकर के उनको जगह मिल जाती, नहीं, तापस वेश में रहना है, साधु के वेश में ही रहना है, सोच करके देखिए। लेकिन उनके चेहरे पर कोई फर्क नहीं है, कोई उतार चढ़ाव नहीं है। यह है बुद्धि का संतुलन। तो यह बुद्धि का जो संतुलन होता है दोस्तों, यह गुरु से मिलता है। और जब मैं गुरु से मिलता हूं तो यह मत समझिए कि गुरु की कृपा से मिलता है, वहीं हम सब गड़बड़ कर जाते हैं, क्योंकि जहां कृपा की बात आती है ना, फिर हम अपने को अलग करने की सुविधा पा जाते हैं। यार, ये तो गुरु कृपा करेंगे तब होगा, जब गुरु की कृपा नहीं होगी तो फिर कुछ होगा ही नहीं, तो हम क्या कर सकते हैं भैया, ये तो गुरु का काम है, गुरु हम पर कृपा करें। गुरु आप पर कृपा कर चुके हैं, उनको जितना आपको बताना था वो बता चुके हैं, उनकी झोली में, उनके खजाने में जितना जो कुछ भी था वो आपको सौंप चुके हैं। आप उसे संभाल कर रखे हैं या नहीं रखे हैं, संभाल कर रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे, और यदि संभाल कर आपने रखा हुआ भी है तो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये तो आपके ऊपर है। आपका गुरु क्या कर लेगा इसमें, उसने तो आपको दे दिया। अगर मैं आपको तलवार दे दूं और अगर आप तलवार का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो बताइए कद्दू भी नहीं कटेगा, आप कोई तलवार क्या कर लेगा, ना तो तलवार कुछ करेगा, ना तलवार बनाने वाला लोहार कुछ करेगा, और ना जिसने आपको तलवार सौंपी है वो कुछ करेगा। जो करने वाले हैं वो तो आप ही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेगा। लेकिन दोस्तों, हम इसे समझ नहीं पाते, और नतीजा यह होता है कि उससे जो हमें लाभ मिल सकता है, हमारे जीवन में जो बढ़ोतरी हो सकती है, हमारे जीवन में यही कह लीजिए कि जो चमत्कार घटित हो सकते हैं वो घटित नहीं होते। और हम बड़ी आसानी से कह देते हैं कि भैया गुरु की कृपा नहीं हुई। याद रखिए कि जो बुद्धि है वो आपको मिल चुकी है, उसे आप धारदार बनाइए, उसे अपडेट करते रहिए, उसका इस्तेमाल करिए, सही तरीके से इस्तेमाल कीजिए बल बुद्धि। क्योंकि अगर हमारी बुद्धि ठीक नहीं रही होती, जरा सा भी गड़बड़ रही होती, तो हम इस घर में नहीं होते, कहीं और खाने में होते हम, है ना, डॉक्टर हमारा इलाज कर रहा होता। तो ईश्वर ने हम सबको बुद्धि दी हुई है, ये बुद्धि ठीक ठाक रहे यह गुरु करता है। इसीलिए श्री गुरु तुम ही इसे ठीक ठाक कर सकते हो। विद्या देहु मोहि, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। अभी जो विद्या है, विद्या क्या है? बुद्धि तो एक उपकरण हो गया, बुद्धि तो मतलब दिमाग का एक ऑर्गन हो गया, चेतना हो गई कह लीजिए। अगर वो बुद्धि ठीक नहीं है, वो मशीन गड़बड़ हो गई है, तो आप उसमें कुछ भी डालते जाइए वो कुछ काम नहीं करेगी, उल्टे सीधे सब कुछ होंगे। तो यहां वो कह रहे कि मुझे विद्या भी चाहिए। विद्या मतलब क्या है? विद्या का मतलब किताबी ज्ञान नहीं है। किताबी ज्ञान तो हम आज उसमें ऐड करते हैं, पुराने समय में ग्रंथों के ज्ञान होते थे, हम उसे ऐड करते हैं। नो डाउट ग्रंथों के ज्ञान के जरिए हम अपने पूर्वजों के ज्ञान को हासिल कर लेते हैं। हमारे पूर्वजों ने अपने अनुभवों से जो लिखा, अब उसे हम कैसे जानेंगे? तो हमारे पास ये बहुत बड़ा खजाना है और हमें उस खजाने का इस्तेमाल करना चाहिए। तो हम इस खजाने का इस्तेमाल कैसे करते हैं? इस खजाने का इस्तेमाल हम पुस्तकों से करते हैं। और पुस्तकों से कैसे करते हैं? गुरु के जरिए हमें पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त होता है। और केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं प्राप्त होता, बल्कि जीवन का ज्ञान भी प्राप्त होता है। समाज की जानकारी मिलती है और यह सारी जानकारी गुरु हमें देता है। क्योंकि गुरु अपने आप में बल और बल बुद्धि विद्या से संपन्न है, वो अपने आप में संपूर्ण है। तो अपनी संपूर्णता वो हम सबको दे रहा है। तो कह रहे मुझे विद्या दो। जब आपके पास विद्या आती है तो क्या होता है? देखिए, विद्या का जो संबंध होता है वो विवेक से होता है। विवेक का अर्थ क्या है? विवेक का अर्थ है निर्णय लेना, निर्णय लेना। निर्णय वो हमारे जीवन, जो हमारे जीवन के आधार होते हैं। हम जैसे निर्णय लेते हैं वैसे ही हमारा जीवन होता है। हमारे जीवन का एक भी एक्शन बिना निर्णय के आगे नहीं बढ़ता। आप सोच करके देखिए, एक भी काम आप बिना निर्णय लिए नहीं करते हैं। हर चीज के लिए आपको निर्णय लेना पड़ता है। निर्णय, ये निर्णय आप लेंगे कैसे? कैसे सही निर्णय लेंगे? क्यों आप गलत निर्णय ले लेते हैं? ज्यादातर लोग गलत निर्णय ले लेते हैं, बाद में पछताते हैं, या पहले निर्णय ले लेते हैं, बाद में उनको लगता है कि गलत निर्णय ले लिया। रीजन चाहे जो भी हो, तो जिसके पास विद्या होगी, विद्या का मतलब है जिसके पास जानकारियां हैं, अपने पूर्वजों के बारे में जानकारियां हैं कि उन्होंने क्या क्या किया, तो जानते हैं कि ये किया तो ये हो गया। गलत शब्द बोले, अंधे का पुत्र अंधा होता है, ये बोल दिया गया तो इतना बड़ा महाभारत हो गया। तो सीधी सी बात है कि भैया हम ना बोलें, ये बात नहीं कहनी चाहिए, कड़वी बात नहीं कहनी चाहिए जो किसी के दिल को आघात पहुंचा दे, दिल में छेद कर दे, नहीं तो उसका नतीजा फिर हम ही को भोगना पड़ेगा आगे पीछे। तो वहां वह सतर्क हो जाता है। तो दोस्तों, विवेक का यह छोटा सा उदाहरण है। तो फ्रेंड्स, अब फिर से समय अपनी उंगली दिखा रहा है, तो अब मुझे तो उस समय के आदेश का पालन करना पड़ेगा, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए हम लोग आगे बात करेंगे। तो अब इस पर फिलहाल के लिए मैं यहीं विराम देने की आप सबसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।